Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Dorman, the moderator for this conference call. Welcome to the earnings conference call of IceMake Refrigeration Limited, arranged by Ariana Matasco, Emerging Company Reputation and PR Service Provider, to discuss the financial results for the Q4 and financial year ended March 2023. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode. Later, we will conduct a question and answer session. At that time, if you have a question, please press star and 1 on your touchtone keypad. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Aryan Rana from Ariana Matasco. Over to you, sir.
Thank you, Dorwin. Hello, everyone. Good evening to all of you and thanks for joining the earnings conference call of IceMake Refrigeration to present and discuss the financial results for the quarter and financial year ended March 31st, 2023. Before we begin, allow me to introduce our company and the management team who will be representing us today. Established in 1993, IceMake Refrigeration is leading supplier of innovative cooling solutions and manufacturer of over 50 plus refrigeration equipment in India. The company started its business with a mere rupees 3 lakh equity, has crossed the market cap of rupees 500 crore. The company with 600 plus employees strength in India has started its business, has manufacturing units in Gujarat and Tamil Nadu, and also they had set up one more unit of manufacturing in West Bengal that is expected to be operational in the next one month. The company over the years has received several awards and accolades, including Indian Leadership Award for Industrial Development, Best Medium Enterprise, Canada Bank and Scotch Award for Manufacturing, India SME 100 Award, and Gold Award for Excellence within its core industry category, and among many more. We have mailed you the results. I hope you've received the same, and we have also uploaded this on our website and stock exchange. Before we proceed to the call, let me remind that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. Joining us on this call are our esteemed executives who will provide insights into our financial performance and strategic outlook. Let me first welcome Mr. Chandrakant P. Patel, Chairman and Managing Director. He has been instrumental in driving the company's growth and overseeing our strategic direction. Mr. Nikhil Bhatt, VP Strategy. He brings a wealth of knowledge, experience and leadership to our organization. Mr. Ankit Patel, CFO, who is responsible for managing our financial operations and providing strategic financial guidance. And the key management from IceMake Refrigeration Limited, including Mr. Mandar Desai, the company secretary and compliance officer. He is responsible for the efficient administration, communication and coordination of the company, particularly with regards to ensuring compliance with its statutory and regulatory requirements, etc. During today's call, our management team will provide an overview of our financial performance for the quarter and year ended March 2023. They will share key highlights, address any questions you may have, and provide insights into our strategic initiatives, market opportunities, and future outlook. With that said, now I will hand over the call to Mr. Patel. Over to you, sir. Thank you so much.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our earnings call and thank you for joining us today. I am delighted to have opportunity to address our valuable investors and the ongoing support and trust in our company are invaluable, and I am excited to share our financial results and strategies also. First and foremost, I want to express my gratitude to our team. Their hard work, dedication, and strong commitment have been helpful in achieving our outstanding performance. Together, we have achieved remarkable milestones over the past quarter and many years, standing our company for sustainable growth and success. let us begin with our financial results. I am happy to announce that we have delivered another quarter of exceptional growth. Despite the global economy going through inflation pressure, the company's yearly net profit jumped to double digits for the first time, and consolidated revenue also achieved another important financial milestone as our annual revenue crossed to be 300 crore in financial year 2023. The significant increase is a directive to our robust business model, innovative products offering, and strong market positioning. Furthermore, our profitability has also jumped significantly. We will work continue to generate value for our shareholders. We have strong current order book of around rupees 68 crore, and we will maintain 25 to 30% growth strike rate annually, along with various products and business verticals that are consistently gaining market share. We are confident that due to our strong foundation and proactive risk management practice, we will face the future challenge well. In conclusion, I want to express my gratitude to our investors for your unwavering support and trust in our company. Our success is a result of our collective effort, and we remain focused on creating sustainable value for all stakeholders. I am confident in our team's ability to execute our strategic initiatives and deliver strong financial performance in quarter and many years to come. Thank you once again for your time, and look forward to answering your questions and provide further insights into our business during the question answer session. Now I invite Mr. Ankit Patel to brief you about financial highlights, and Mr. Nitin Dutt to provide business update. Thank you.
Thank you, sir. Hello, everyone. Thank you for joining us today for this analyst call. I am honored to have the opportunity to address you as the Chief Financial Officer of the company. Before I get into financial year end performance details, let me begin by providing overview of financial performance over past quarter. Despite challenging economic environment, I am pleased to reiterate that we have delivered strong results. In Q4 FY23, revenue increased by 47.93%, reaching all-time high 114 crore compared to 77 crore in corresponding period of fiscal 2022. Compared to Q3 FY23, the same was up by 71%. In Q4 FY23, the company maintained EBITDA margin at 11.3%, slightly higher compared to 11.2% in Q3 FY23 and 11.6% in Q4 FY22. During the quarter, cost of goods sold, COGS, as a percentage to total income stood at 70.5% as against 69.8% in December 2022 and 70.6% in Q4 FY22, led by higher sales, strong growth in revenue and cost control. The company was able to maintain high profitability, resulting in 43.6% year-on-year growth in EBITDA in Q4 FY23 to 12.88 crore. Interestingly, despite higher sales, the company was able to reduce debt. As a result, finance costs saw a significant drop by 64.2% in Q4 FY23 to 19.25 lakhs. finance cost as a percentage of revenue dropped to its lowest level to 0.2% in Q4 FY23, as against 0.9% in Q3 FY23 and 0.7% in Q4 FY22. The company's interest coverage ratio stays quite healthy, 61.4 times. Net profit during Q4 FY23 stood at 8.63 crore as against 5.53 crore in Q4 FY22, witnessing a strong 56% year-on-year growth. Compared to Q3 FY23, net profit saw robust 94.8% growth. Our operating cash flow of the company stood at 24.34 crore in FY23, as against 8.31 crore in FY22. At the end of fiscal 2023, the company had total 11.55 crore short-term investment in the form of FD and liquid investment. Net profit made nearly twofold jump, registering 184% growth on year-on-year basis, led by strong demand and recovery in market and introduction of product revenue so charged in. Further, due to higher sales, cost control and better pricing, the company achieved highest profitability in recent years. During the fiscal year 2023, the company's total income jumped by 51.5% on year-on-year basis to 313 crore as against 206 crore revenue in the fiscal 2022. Because of cost control and higher sales, during the year, EBITDA grew by 118.8% on year-on-year basis to 33.23 crore. EBITDA margin in fiscal 2023 expanded by 330 basis points, that is 10.6%, as against 7.3% in fiscal 2022. The focus of company is to expand offline while maintaining margin with highly operating cash flow. This growth can be attributed to several key factors, including market expansion, successful product marketing, and enhanced operational efficiency. Robust increase in demand helps in improving our operating performance. Furthermore, our commitment to cost management and optimization has yielded significant benefits. This achievement demonstrates our ability to adapt changing market dynamics while maintaining disciplined approach to financial management. Our focus on innovation and product development has also paid off. We have witnessed robust demand for our new offerings. The success is a testament to our continuous investment in research and development, as well as our ability to identify and address customer needs very efficiently. Before I close my comments, I want to emphasize that our financial performance is a reflection of collective efforts of our dedicated team and employees. We remain committed to enhancing our operational efficiency and optimizing our cost structure. We believe that a lean and agile organization will enable us to respond swiftly to market demands and maximize profitability. Thank you for continued support, and I look forward to updating you on progress on coming quarters. Thank you.
Ladies and gentlemen, hope you are having a great time, and thank you for joining us for today's important session. Your keen insights and valuable feedback directly and through our advisors are instrumental in setting our strategic direction. We want to express our appreciation for your continued support and trust in our company. It is your confidence in our vision and potential that drives us to constantly seek new opportunities and successfully navigate through challenges. Before I go on strategic initiative, let me update you with business updates. Our focus on innovation and product development has also paid off. We have witnessed robust demand for our new offerings, resulting in more than 51% growth in sales volume compared to the same period last year. This success is a testament to our investment in research and development, as well as our ability to identify and address customer needs effectively. As our chairman rightly said, that we are having a pending order book of about 68 crores, and during the recent past months, we have received a good order in the food processing industry amounting about 14.6 crores, as well as one big order of 6.35 crores, which is under process. We are also receiving a good order from dairy sector, which is about 5.20 crores, as well as from e-commerce sector, 1.29 crores. In solar product business, we have received good numbers of orders, that is 32 units from our OEM, amounting to rupees 2.6 crores. And other sizable orders are in the pipeline. The key focus area of the strategic part will be, we will focus on the to increase the top line, focus on greenfield projects of continuous channels of timely start within the cities, that is April 24, maintaining margins, ensuring consistent growth of at about 25 to 30%, focus on other geographical expansion across country. To stay ahead, we recognize the need to be proactive and agile in our approach. Our overarching strategy is centered around three key pillars: innovation, customer centricity, and operational excellence. These pillars guide our decision-making process and enable us to navigate the ever-evolving marketplace effectively. Our company operates in sectors that play a critical role in various industries, including food and beverages, pharmaceuticals, healthcare, and logistics. By providing comprehensive support throughout the entire customer journey, from initial consultation to ongoing maintenance service, we aim to become a trusted partner for our customers. Our dedicated customer service team is trained to provide timely assistance and ensure that our solutions continually meet their evolving demand. In summary, our business strategy in the refrigeration and cold storage solution industry revolves around innovation, customer centricity, and sustainability. By continuing to see the boundaries of technology, understanding our customers' needs, and prioritizing environmental responsibility, we aim to maintain our leadership position in the market and deliver long-term value to our stakeholders. Thank you for your attention, and I am happy to address any questions you may have during the session. Thank you.
Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Sriram R., an individual investor. Please go ahead.
Thank you for the opportunity, sir, and congrats on this good number. Firstly, sir, can you give the segment-wise revenue breakup for FY 23 and 22?
Our cold room vertical share was around 46% of our total top line, and commercial share was 28%. Then ammonia and reefer van was respectively 10-10%, and industrial refrigeration was around 5%.
And sir, for the last year, same split, can you
do? Last year, cold room was the as usual maximum contributor. It was around 50%, and after that commercial was around 22-23%, and reefer van was 10%, ammonia was 12%, and industrial refrigeration was at the same level, 5%.
And sir, last year what was your order book? This year 68 crores. So last year
the order book is running order book, so it may be around 40-45 crores, maybe at that time.
Okay, okay. And sir, my last question, sir, in your press release, you have given something called continuous penal business will be operational by April 24th. Sorry, sir, I am not able to understand this. What is that business actually?
Actually, we have initiated one project for our one of the products, that is continuous swap panel. That is a panel used for the refrigeration industries as well as the infrastructure business. So that project was finalized last year and now it is in the process.
Okay, panel, okay. Cold room panel, is it?
Yeah, yeah, cold room panel as well as this can be used in infrastructure also.
And so what is the composition, sir? What is the material actually?
Material will be a steel and the top chemical, mainly.
Steel and chemical. Okay. Answer for CAPEX for FY 24.
Sorry?
So, what is your CAPEX for FY 24?
The major CAPEX in this project is around 60 crores.
60 crores. Okay. And so, this run rate which you have achieved, this 100 or two, is it sustainable or is it because a lot of orders got booked in the last quarter? Because there's a substantial increase from, you know, 60, 70, we have achieved 100 plus, so just want to understand where
it is. See, overall recreation industry is growing in India, this market is still going on, and overall industry is growing as well as our company, we are establishing our setup in 30 years. So our operational reach or the marketing reach is also enhanced. We are also trying to enhance our geographical reach by various actions, and we are taking a new startup for the pop panel, only pop panel in the east of India, that will be running by next month. So this will go on, and overall it's a growing market.
Okay. Fine, sir. I'll join the queue.
Thank you. The next question is from the line of Sanjay Shah from KSA Securities. Please go ahead.
Yeah. Good evening, gentlemen. Sir Chandrasekhar, congratulations for good numbers, you and your team, and thanks for opportunity.
Thank you.
Continuing to the follow friend question, regarding the growth, what India is, what is been estimated around 15-17%. In refrigeration, storage, cold chain and storage. And we are expecting more than 30% growth. So, sir, can you help me how the optimism is coming from? Is that we are capturing a market share in the industry, or organized to unorganized to organized is coming up? Will really help me to understand.
एक्चुअली हम लोग रेफ्रिजरेशन के साथ साथ प्रोसेसिंग में भी काम करते हैं, जैसा डेयरी प्रोसेसिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, फूड प्रोसेसिंग सॉल्यूशन भी है, आइसक्रीम के क्रंची सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करते हैं, और रेफ्रिजरेशन में अब तक हम लोग जो काम करते थे उसमें हमारी कई सारी बॉटलनेक भी थी, कैपेसिटी को लेके, प्रोडक्ट रेंज को लेके, लाइक टेम्परेचर ऐसे सब कुछ. तो हमें भी टॉप लाइन ग्रो करना था, तो ये बॉटल नेक को हमने हटाए, हमारी प्रोडक्ट रेंज बढ़ा किया, टेम्परेचर बढ़ा किया, और आपको हम लोग हर बार बोलते हैं कि हमने जियोग्राफिकल एक्सपांशन किया हुआ है, क्योंकि अभी भी हमारा वीक से जो रेवेन्यू है वो 63% है, और बैलेंस जो है 37% और इंडिया के और तीन रीजन है, तो जियोग्राफिकल एक्सपांशन की वजह से भी हम लोग 30% या 30% से ज्यादा ग्रोथ कर पाए, ऐसा हमें कॉन्फिडेंस है.
That's good. दूसरा मेरा सवाल था, ये जो हमारा नया वर्टिकल हम खड़ा कर रहे हैं, कि जो हम कैपेक्स कर रहे हैं, दैट इज कंटीन्यूअस पैनल, उसके बारे में थोड़ा समझाएंगे, दैट वो उससे हमें व्हाट एडवांटेज हमें मिलेगा वो होने के बाद, व्हाट विल बी द एडवांटेज टू अवर कंपनी, बिकॉज हाउ मच परसेंट विल यूज एज अ कैप्टिव, और कितना हम बाहर बेचेंगे, और उसमें मार्जिन कैसे पैन आउट होगा.
एक्चुअली हमारा कैप्टिव कंजम्पशन प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी के सामने देखे तो नॉमिनल है, लेकिन लास्ट ईयर लास्ट तीन चार साल से हम लोग बड़े प्रोजेक्ट जो हम 6 साल से हमने अमोनिया रेफ्रिजरेशन का काम शुरू किया, तब से हमारे पास बड़े कई सारे प्रोजेक्ट आते जिसमें 5 करोड़ से बड़ी वैल्यू के ऑर्डर होते, उसमें रेफ्रिजरेशन में टॉप पैनल सप्लाई होता है. लास्ट ईयर हम लोगों ने जो जब अभी थ्रू जो है वो ईयर में हम लोग 14 से 15 करोड़ का कंटिन्यूस पैनल आउटसोर्स किया था, और कई सारे ऑर्डर ऐसे होते हैं जहाँ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो हम लोग कोट ही नहीं करते, कस्टमर को डायरेक्ट गाइड करते कि भाई आप मैन्युफैक्चरर से काम कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट में टेक्निकल गैप नहीं है, क्योंकि पॉप पैनल एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, साइट से जाके इंस्टॉलेशन के बाद में उसमें कोई फंक्शनल मूवमेंट नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट गाइड भी करते हैं, ऐसा भी है कि वॉल्यूम इतना ही होगा जितना हम लोगों ने हमारे अकाउंट में लेके हमने बेचा। और रेफ्रिजरेशन के साथ साथ हम जो प्रोडक्ट में काम करने जा रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उनका काफी डिमांड है, इंडिया में अभी शुरू हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि पीवी बिल्डिंग जितने भी इंडस्ट्रियल वेयरहाउस जो भी सुपरमार्केट या जितने भी पब्लिक बिल्डिंग होते हैं वहाँ पीवी बिल्डिंग के साथ इंसुलेटेड सीट होने से एयर कंडीशनिंग लोड कम होता है, एयर कंडीशनिंग कैपेसिटी कम लगता है, जिससे रनिंग कॉस्ट भी कम होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट भी कई सारे इंडिया के एयरपोर्ट में भी पॉप पैनल काफी सारे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रगति मैदान में अभी पूरे एग्जीबिशन के जितने भी हॉल थे वो सब नए बन रहे, उस एग्जीबिशन हॉल में पॉप पैनल से पूरा बिल्डिंग बन हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट भी है और रेफ्रिजरेशन में तो पॉप पैनल है ही, और ये इंसुलेटेड पैनल है, जहाँ भी आपको लगता है कि बिलो 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, हायर साइड है, हॉट एरिया में भी लग सकता है, लो एरिया में भी लग सकता है, जैसा डिफेंस के लिए कोई ग्लेशियर में या तो जहाँ बिलो 10 डिग्री टेम्परेचर है ऐसी जगह पर जो फैसिलिटी होती है वो सब जगह पर इंसुलेशन वॉल होना काफी बेनिफिशियल है। तो ये हम लोग तो इस प्रोडक्ट करने के लिए 3-4 साल से सोच रहे थे, बीच में कोरोना की वजह से ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने होल्ड किया था। मार्केट ग्रोथ भी है, हमारे जितने भी पीएस है वो लोगों ने पिछले 6-7 साल में सबका कोई किसी का नॉर्थ में प्लान था तो उसने सेंट्रल इंडिया में लगाया, कोई साउथ में जा रहा, तो हमारे अब इंडिया के एग्जिस्टिंग प्लेयर का जो ग्रोथ देख के भी समझ में आता है कि मार्केट ग्रोथ भी है।
Excuse me, sir. The current participant in the queue seems to have disconnected. We will proceed with the next question. Before we do so, we would like to request participants, if possible, to ask your questions in Hindi as well. The next question is from the line of Nikhil Chaudhary from Crisp PMS. Please go ahead.
Yeah, sir, very congratulations for a very great set of numbers. Sir, meko ek question hai. कि हम लोग ने वी हैव एक्सपांडेड इन बंगाल, व्हाट हम लोग क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं टू गेट द बिजनेस, बिकॉज इट इज नाउ टोटली मतलब वो एक होम ग्राउंड, हम होम ग्राउंड से बाहर निकल रहे हैं, ऑलरेडी वी आर देयर आउटसाइड आर गुजरात, बट वांटेड टू अंडरस्टैंड द इनिशिएटिव्स दैट वी आर हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं सो दैट वहां पे बिजनेस से फॉर एग्जाम्पल एंट्री से ही हमारा चालू हो जाए, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स, सेल्स पर्सन वेदर वी हैव हायर्ड, अवेयरनेस क्रिएशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब वो समझना।
एक्चुअली ईस्ट में काफी पोटेंशियल है, ईस्ट ऐसा है तो वर्जिन मार्केट है, वहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, और ऑलरेडी हम लोग हमारा ईस्ट में मार्केट शेयर हमारा टॉप लाइन में 11.5% रेवेन्यू इस रीजन से हम लोग ले आते हैं। एक्चुअली ये प्रोडक्ट ज्यादा कैपेक्स तो हमने नहीं किया है, लेकिन आज के ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी बढ़ गया है, तो हमारी प्रोडक्ट है वो वॉल्यूमेट्रिक है, ईस्ट में जितने भी डिस्पैच या होते हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट 8-14% लॉजिस्टिक कॉस्ट है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, छोटे ऑर्डर के लिए हर टाइम पे स्पेशल ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए लोकल प्रेजेंस होने से हम काफी कुछ लॉजिस्टिक कॉस्ट कस्टमर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ हमारे लिए हो सकता है, और लोकल प्रेजेंस होने से हमारी कई प्रोडक्ट का हम लोग वहाँ स्टॉक पॉइंट करेंगे, तो डिलीवरी दे देंगे, भी जल्द अर्ली डिलीवरी मिल सकता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा और लोकल होने का एक अलग कॉन्फिडेंस है। ऑलरेडी हमारे सेल्स टीम थे, हमारे कई सालों से कंपनी के साथ एक एक्सक्लूसिव एसोसिएशन कनेक्ट है लिस्ट में, ऑलरेडी सेल्स और सर्विस नेटवर्क तो पहले से है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने से स्किल बड़ा होगा तो वो फिर एक बार स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे हम लोग।
ओके ओके सर, तो करेक्ट, मतलब सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज्यादा बेटर दे पाएंगे, बट वहाँ का अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारे जैसा कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है, ये मेरा समझना करेक्ट है? ईस्ट में स्पेसिफिकली
नहीं, वहाँ लोकल मैन्युफैक्चरर में तो कोई ऑर्गेनाइज भी नहीं है, अनऑर्गेनाइज भी इंडिया के बाकी रीजन के मुकाबले काफी कम है, लेकिन सभी लोग अपना मुंबई दिल्ली या तो साउथ से ही मटेरियल डिस्पैच होता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट किया। वैसे तो हम मार्केट अच्छे से जानते हैं, कई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हमारे गवर्नमेंट के कई सारे डेली क्लाइंट भी है जो लोग जहाँ हम लोग सालों से काम करते हैं।
गॉट इट सर, समझ गया सर। और ये जो हमने केपेक्स किया है इसमें कुछ गवर्नमेंट का हमको इंसेंटिव मिला वहाँ पे सब्सिडी का, जो हम मतलब कि इट वाज प्योरली हमने अपने हिसाब से हमको अपना रीच बढ़ाना था, बॉर स्ट्रॉन्ग करना था तो जाके केपेक्स किया, जस्ट ट्राइंग टू मैं समझना चाहता हूँ वो चीज।
गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर स्कीम और सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमें वो सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए कैपेक्स प्लान नहीं किया है। अगर इन बिटवीन कुछ एक सब्सिडी हमें एलिजिबल होती है तो उसके लिए भी हमारा वर्किंग तो साइड में चल रहा है।
गॉट इट, मतलब सब्सिडी मिल सकता है ना अंकित सर?
वैसे एमएसएमई में तो अभी हमारा टर्नओवर चला गया है तो एमएसएमई वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन सेंटर की कई और सब्सिडी भी है जो कंसल्टेंट के थ्रू हम अभी उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि सब्सिडी मिल सकती है।
गॉट इट सर। सर थैंक यू, विश यू विश आई मेक फैमिली ऑल द बेस्ट एंड कीप डिलीवरिंग सर ग्रेट रिजल्ट। थैंक यू सर।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ महेश अटल फ्रॉम अटल एडवाइजरी, प्लीज गो अहेड।
कांग्रेचुलेशन, इतने अच्छे नंबर आपने दिए। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो सर की हमके वेस्ट बंगाल में जो हम प्लांट लगाने वाले हैं इसका मार्जिन और हमारे जो एग्जिस्टिंग मार्जिन है इसमें क्या फर्क रह सकता है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा सर कि ये जो कंटिन्यूस पैनल का जो बिजनेस है क्या ये सिर्फ आपके अमोनिया बेस्ड जो हमारा सेगमेंट है इसी में यूज होता है या कोल्ड स्टोरेज वाला जो सेगमेंट है उसमें भी यूज होता है?
एक्चुअली वेस्ट बंगाल मार्जिन में वहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो होगा ना वो फैसिलिटी से आने वाला आउटपुट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, तो मार्जिन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वैसे हमारे टॉप लाइन में वो कंट्रीब्यूशन भी कम है तो मार्जिन एक जैसा मार्जिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, हम लोग वहाँ के मार्केट को मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर के लिए टेस्ट करना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ फैसिलिटी करने के बाद लोकल चैलेंज क्या है, स्किल क्या है, वहाँ की जो एक इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट से मिलना चाहिए उससे क्या हर्डल्स है, तो ये टेस्ट करने का पर्पज है। और हमारा 40 करोड़ का मार्केट है, हर साल हम लोग वो एरिया में 35-40% टॉप लाइन ग्रोथ कर सकते हैं और इनके लिए आगे जाके हमें एक लोकल स्टॉक पॉइंट की जरूरत थी। पर्पस तो यही है, मार्जिन के लिए इतना छोटा कैपेक्स करने का कोई मतलब नहीं था।
कंटिन्यूस पैनल में जो आप पूछ रहे हैं कि अमोनिया बिजनेस में ही रहेगा या फिर बाकी सेक्टर में जाएगा, तो ये कंटिन्यूस पैनल जो है वो सिर्फ एमोनिया नहीं बड़े कोल्ड जो लगते हैं उसमें भी लगता है, और ऑल टाइप ऑफ कोल्ड चेन में या रेफ्रिजरेशन में या इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगह पे ये कंटिन्यूस पैनल यूजफुल है और अभी यूज होता है।
तो एमोनिया में तो जो बड़े लार्ज प्रोडक्ट ज्यादातर होते हैं तो उसमें तो लगेगा ही, मगर बाकी एमोनिया तो छोड़ के प्रोजेक्ट में भी लगेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगेगा।
सॉरी टू इंटरप्ट, द लाइन फॉर यू इज हैज अ स्लाइट डिस्टरबेंस ऑन इट, सो यू आर नॉट वेरी ऑडिबल क्लियरली, एंड वी रिक्वेस्ट टू ऑल्सो म्यूट योर लाइन व्हेन द मैनेजमेंट इज आंसरिंग बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन द लाइन।
ओके, ऑलराइट सर, माय सेकंड क्वेश्चन वुड बी, इज आवर बिजनेस सीजनल इन नेचर, बिकॉज आई सी दैट देयर इज अ ह्यूज जंप इन Q4, एंड बिकॉज ऑब्वियसली रेफ्रिजरेशन मतलब ये समर के टाइम पे लगने वाली चीज होगी, तो क्या ये मान सकते हैं कि जो हमारा पीरियड जनवरी टू फर्स्ट हाफ जो होता है मतलब कैलेंडर ईयर का, इज अवर हाईएस्ट सेल पॉइंट एंड देन इट स्लोली कम्स डाउन दैट वे? हाउ एग्जैक्टली शुड बी लुक एट योर नंबर गोइंग अहेड, लाइक Q1, Q2, Q3, Q4, अगर आप बाइफर्केट कर सको कि ज्यादा बिजनेस कहाँ आएगा ओवर द ईयर्स में, ऐसे अपना जो बिजनेस का जो होता है।
अभी पिछले साल के हम चार क्वार्टर को देखिए तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में मोर और लेस सिमिलर बिजनेस था, उसमें ऐसे कोई इतना ज्यादा जंप नहीं था। और मार्च जनरली देखे तो मार्च समर आने से पहले मतलब लोग प्लानिंग करते हैं जनवरी से लेके मार्च तक, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट डालना है, कोई कैपेक्स करना है तो उसका इमीडिएट सीजन में बेनिफिट आए। तो अभी देखे तो सीजनलिटी वाला जो इम्पैक्ट है वो पिछले साल से या पिछले कपल ऑफ ईयर मतलब पिछले दो साल की बात करें तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और हम रेफ्रिजरेशन के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग में भी है तो वैसे कई प्रोडक्ट है, तो ऐसी सीजनलिटी वाला इम्पैक्ट उसके ऊपर होता भी नहीं है। तो मोर और लेस हमें लगता है बिजनेस स्टेबल रहेगा, हो सकता है Q4 जो है उसमें थोड़ा सा हायर या ज्यादा बिजनेस हो, बट अदरवाइज बाकी तीनों क्वार्टर में हमें लगता है बिजनेस सिमिलर रहेगा और ग्रोइंग रहेगा।
ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर।
थैंक यू।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ जाकी नासर, एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, प्लीज गो अहेड।
हेलो।
यस, यू आर ऑन सर, यू मे प्रोसीड।
चंद्रकांत भाई, पहले आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई सर इतने एक्सेलेंट नंबर्स पैन आउट करने के लिए। सर, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस यू हैव गिवन इन योर स्टेटमेंट 30% ग्रोथ इन 23। सर, डू यू थिंक द मार्जिन्स विच वर पॉसिबल इन 23 वुड बी पॉसिबल इन 24 सर? दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, हाउ डू यू जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस है जो पिछले दो साल से काफी वॉलोटाइल थे, वो अभी हैव दे स्टेबिलाइज, और ये इसमें आपका क्या ओपिनियन है सर? थैंक यू।
रॉ मटेरियल प्राइस लास्ट ईयर स्टेबल थे, अभी भी स्टेबल है, ऐसा 5-10 साल के बाद में कभी 7 साल आता है कि प्राइस में अनसर्टेनिटी होती है, ज्यादातर इंक्रीज होने की जो कंसिस्टेंट इंक्रीज है, लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि सडनली इंक्रीज होने का अभी कोई रीजन भी नहीं है, पहले तो कोविड की वजह से पूरा एक सप्लाई चेन डिस्टर्ब था, सप्लाई चेन की वजह से भी प्राइस काफी ऊपर चला गया था, तो क्राइसिस शॉर्टेज के टाइम पे प्राइस किसी के कंट्रोल में नहीं होता, तो प्राइस हमें नहीं लगता है कि ये स्टेबल ही रहेगा, ऐसा हमें अभी कॉन्फिडेंस है। एक आध रो मटेरियल कॉमोडिटी में थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो कोई एक आध मटेरियल नीचे भी आता है, तो एवरेज रो मटेरियल कॉस्ट कंपोनेंट है हमारा, वो बैलेंस हो जाता है। मैं अंकित भाई को बोलता हूँ, थोड़ा फाइनेंशियल पर
हमने इस साल का जो प्रोजेक्शन रखा है उसमें सभी वर्टिकल में हमें लगता है कि काफी अच्छे से ग्रोथ होगा, मतलब कोल्ड रूम हमारा मेजर वर्टिकल है तो कोल्ड रूम है, कमर्शियल है, इवन इंडस्ट्रियल भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो मार्जिन हमें लगता है कि अगर अभी इसी तरह से जो हमने प्रोजेक्ट किया है उसी हिसाब से हमारा ग्रोथ रहेगा तो मार्जिन हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर मैच हो जाएगा। हो सकता है कभी ऐसा हो कि कोई प्रोजेक्ट वाला बिजनेस बढ़ जाए या थोड़ा सा हमारा सेल मिक्स आगे पीछे हो जाए तो मार्जिन स्लाइटली आगे पीछे हो सकता है, बट
इस साल के जो प्रोजेक्शन और हमें जो अभी ऑर्डर एग्जिस्टिंग मिल रहे हैं, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई ज्यादा चेंज आए।
ठीक है। और चंद्रकांत भाई, एक आपसे क्वेश्चन था सर, आपका साउथ मार्केट में क्या ओपिनियन है सर? बिकॉज साउथ इज अ लार्ज मार्केट, तो व्हाट इज योर ओपिनियन? और आप अभी ईस्ट कर रहे हैं, तो व्हेन विल योर अटेंशन टर्न टुवर्ड साउथ सो दैट यू हैव अ लार्जर मार्केट शेयर?
साउथ मार्केट भी अच्छा है, हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो हमें सपोर्ट करता है, मार्केट अच्छा है, लेकिन लोकल प्लेयर भी काफी है वहाँ। जैसा मैंने पहले बोला था कि ईस्ट में लोकल कंपटीशन नहीं है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो एक रीजनल मैन्युफैक्चरर के साथ हमें कॉम्पीट करना है, तो वहाँ वो मार्केट में हम जितना हमारी उम्मीद जितना हम अच्छा कर नहीं पाते, लेकिन हमारा जो मार्केट शेयर है हमारे टॉप लाइन में और ओवरऑल मार्केट में वो हम मेंटेन करते हैं। हमारी थोड़ी फैसिलिटी भी जो है भारत रेफ्रिजरेशन चेन्नई की, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लिमिटेशन है, हम ज्यादा करना चाहे तो भी वहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पाएगा। वो रेंटल प्रीमाइसिस है, हम लोग अभी उनके लिए सोच रहे की रेंटल का वैसे भी एग्रीमेंट टाइम जो था हमारा 5-6 साल का वो होने में, तो फैसिलिटी शिफ्ट करने के बाद हमें लगता है कि और प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग वहाँ बढ़ाएंगे, अभी एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो शायद नेक्स्ट ईयर में उनका इफेक्ट हो सकता है।
जी सर, थैंक यू चंद्रकांत जी, और आपको और एंटायर आईस्नेक टीम को बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।
Thank you.
Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Ashish Chu from Hidden Gems Private Limited. Please go ahead.
Hello.
Yes, hello. Please go ahead.
Chandrakant ji, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इतने बढ़िया नंबर देने के लिए। मेरे जो सवाल है वो कॉन्टिन्यूस पैनल प्रोजेक्ट को लेके है। कुछ तो एड्रेस हो गए ऑलरेडी जो पहले पार्टिसिपेंट ने सवाल पूछे थे, जिसमें मुझे ये पता करना है चंद्रकांत जी, अभी इंडिया में जो कॉन्टिन्यूस पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, और भी कोई है बड़े प्लेयर्स हमारे अलावा? वी आर और आगे कौन से भी द फर्स्ट प्लेयर फॉर कॉन्टिन्यूस पैनल?
नहीं नहीं, कई लोग हैं हमारे इंडिया में, थर्टीन टू फिफ्टीन प्रोडक्शन लाइन इंडिया में ऑलरेडी चल रही है, कई मल्टीनेशनल कंपनी भी है, इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में है, और सेम जो मैन्युफैक्चरर है वो भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे।
तो अभी हमारी जितनी प्रोडक्शन अभी रिक्वायरमेंट है जितने हमारे इंडिया में, तो वो सारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से मीट हो जाती है या हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं?
कई सारे मरीन इंडस्ट्रीज में ईपीसीजी बेनिफिट होते हैं, कई सारे होटल प्रोजेक्ट होते हैं, वो लोग इम्पोर्ट करते हैं। एक्चुअली ये बल्कि प्रोडक्ट है ना, तो शिपिंग कॉस्ट की वजह से इम्पोर्ट करना कॉस्ट वाइज इसी नहीं आता है, तो डोमेस्टिक मार्केट ही है। हम लोग इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं सराउंडिंग कंट्री में, लेकिन इंडिया की डिमांड में प्रोडक्ट इंपोर्ट का परसेंटेज काफी कम होगा।
अच्छा अच्छा, इसमें सर जितना हम लोग अभी कैपेसिटी लगा रहे हैं कंटिन्यूस पब पैनल का जो नया प्रोजेक्ट लग रहा है, तो फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है इस प्रोजेक्ट का?
सिंगल शिफ्ट में हम 200 करोड़ या 200 करोड़ प्लस का हम टॉप लाइन जनरेट कर सकते हैं
सिंगल शिफ्ट के अंदर।
हाँ, सिंगल शिफ्ट में।
ओके। और सर ये जो हमारा कलकत्ता में जो एक्सपेंशन चल रहा है, वहाँ पे जो मुझे समझ में आया है कि उसमें केपेक्स ज्यादा नहीं है, उसमें सिर्फ ये होगा कि हम बल्क में मटेरियल वहाँ पे सप्लाई करेंगे, वहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन होगा, और जो ईस्टर्न मार्केट है वो उसको केटर करेगा ये प्रोजेक्ट। क्या अंडरस्टैंडिंग ठीक है मेरी?
हाँ, और बिल्कुल ठीक है। हम वहाँ वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, जो हमारी अभी की जो वहाँ की बिजनेस है, जो मेन वैल्यू आपकी है कूल रूम से और उसमें पॉप पैनल जो है वो वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ करेंगे, बस यही है।
तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे ख्याल से वो जो आपका 100% सब्सिडरी है आई स्पेस के नाम से शायद उसमें लग रहा है ये वाला प्रोजेक्ट,
वो 100% नहीं है मगर सब्सिडरी कंपनी है आई स्पेस करके, एक नया हमने आइडेंटिटी क्रिएट किया है आई स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो वहाँ के एक लोकल हमारे कस्टमर है या OEM है उसके साथ हम करने जा रहे हैं। और उसमें पहले स्टार्टअप में प्योरली पॉप पैनल का ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इसके साथ अभी जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कई सारे ऑर्डर का हमें अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, तो वो हिसाब से वो बेनिफिट सीधा रहेगा और हम वहाँ से एक कॉम्बो सॉल्यूशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का स्टॉक पॉइंट करके भी दे सकते हैं, जिसके कस्टमर को एक लैंडिंग कॉस्ट थोड़ा कम रहेगा। अभी हमारा जो सब्सिडरी में आइसमेक का जो शेयर है वो 60% है।
तो सर वो वाला जो प्रोजेक्ट है उस सब्सिडरी का जो है रेवेन्यू पोटेंशियल कितना रह सकता है?
वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी टॉप पैनल की जो रहेगी वो 8 से 10 करोड़ इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है पैनल का, मगर इनडायरेक्टली जो बिजनेस में उसका इफेक्ट आएगा वो हमें लगता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ट्रेडिंग के हिसाब से और लोकल प्रेजेंस के हिसाब से हमारा जो होगा एग्जिस्टिंग जो ईस्ट साइड में 11 से 12% में जो रेवेन्यू शेयर है वो बढ़ने का चांसेस है।
Thank you, Chandrakant ji, and all the best for the future, and all my good wishes to the ISPEC family. Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Meet Katrodia from Niveshai. Please go ahead.
Hello, sir. I'm audible.
Yes, sir. Audible, yes. Sir. Please go ahead.
Sir, आप स्टार्टिंग में कॉन कॉल की बता रहे थे कि एक प्रोडक्ट है जिसमें 51% ऑफ ग्रोथ हम जो हमारी न्यू ऑफरिंग है उससे आ रहा है, तो वो कौन से प्रोडक्ट है आप बता सकते हैं?
नहीं, 51% का जो ग्रोथ बता है ओवरऑल कंपनी के टॉप लाइन का बताया कि वी हैव इंक्रीज अवर सेल्स रेवेन्यू बाय 51% मोर देन 51 कम्पेयर टू लास्ट ईयर।
राइट, सो न्यू ऑफरिंग मतलब कोई नई प्रोडक्ट है वो मतलब हम यूनिक प्ले कर रहे हैं उससे कुछ?
नहीं, न्यू ऑफरिंग में जो हमने 3-4 साल पहले जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो बड़े दो मशीन का हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था और मार्केटिंग, नाउ इट इज एस्टैब्लिश प्रोडक्ट, तो फूड प्रोसेसिंग में जैसा ओवरऑल मार्केट में उसका ग्रोथ ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, तो वो हिसाब से हमें लगता है कि वो न्यू प्रोडक्ट जो हम बोल रहे हैं उसका ग्रोथ ज्यादा है। लास्ट ईयर हमें 10 करोड़ के ऊपर उसका बिजनेस हुआ है और इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं 25 से 30 करोड़ के आजूबाजू वो प्रोडक्ट से हमें बिजनेस मिलने का चांसेस है।
ओके सर, सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो हम कंटिन्यूस पैनल का जो नया एक्सपेंशन आ रहा है वो आप प्रेस रिलीज में अभी बताया था कि Q1 FY25 से आएगा, तो Q1 FY25 से आएगा क्या, उससे पहले FY24 में कमर्शलाइज हो जाएगा वो?
नहीं, मोस्टली तो Q1 में ही उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसका जो लीड टाइम है मशीनरी वगैरह का और इंस्टॉलेशन, तो करीबन मार्च तक तो वो प्रोजेक्ट चलेगा, यानी इट विल बी कॉमर्शलाइज इन द अप्रैल ओनली।
सेकंड क्वेश्चन इज सर, कंटिन्यूस पैनल में मतलब पहले हम आउटसोर्स करते थे, अब हम मतलब इन हाउस मैन्युफैक्चर करके, तो मार्जिन बेनिफिट कुछ मिल सकता है क्या ओवरऑल बिजनेस साइड से?
वैसे मार्जिन बेनिफिट भी पॉसिबल है और टॉप लाइन मतलब कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हम ये आउटसोर्स करते हैं तो हम कॉस्ट में कम्पीट नहीं कर पाते, तो मार्जिन तो उसमें सिमिलर रहेगा, प्लस हमें टॉप लाइन बढ़ाने के लिए और नए बिजनेस में भी काफी हमें उसमें ग्रोथ मिल सकता है।
सर, और हम बता रहे थे कि प्रोसेसिंग से भी हमारा रेवेन्यू आ रहा था, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू प्रोसेसिंग से आता है सर?
फूड प्रोसेसिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, जिसमें से हमारा 15 से 20% का ओवरऑल शेयर है इंडस्ट्री का।
ओके सर, थैंक यू।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ अरविंद कोठारी फ्रॉम निवेशाय, प्लीज गो अहेड।
सर थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी एंड सर बहुत बहुत बधाई। आई गेस हम लोग जो 500 करोड़ के टर्नओवर का एक मैजिक फिगर कभी बात करते थे, दैट इज सो अचीवेबल नाउ। कंग्रेचुलेशन टू द होल टीम। मेरे कुछ सवाल थे सर, कि एक तो अपना ये जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट कुछ पॉसिबल है क्या वॉल्यूम से? जैसे अभी हमारा वॉल्यूम तो काफी बढ़ गया बिजनेस का, लेकिन मार्जिन सिमिलर है, तो अपन को कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज अपने बिजनेस में कब मिल पाएगा, किस टर्नओवर पे, या वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है?
वैसे हमने प्रीवियस फोन कॉल्स में भी किया था कि मार्जिन हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है हमारा टॉप लाइन और मार्केट का शेयर बढ़ाना। तो मार्केट शेयर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिक ऑफ स्केल हमें मिल सकता है, पर अभी हम कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट या थोड़े से ऐसे सेटअप भी करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा ये जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंटली और मोर सिस्टम ड्रिवन रहेगा। थोड़ा सा हम ग्रोथ और मार्केट रीच के लिए थोड़ा सा और एग्रेसिव होंगे उसकी वजह से। तो मार्जिन हमारे सिमिलर रहेंगे, उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट अभी आने वाले टाइम में हमें नहीं लगता कि इस मार्जिन में हम ज्यादा इम्प्रूवमेंट का भी प्लान कर रहे हैं, पर हाँ टॉप लाइन हम उसको एग्रेसिवली बढ़ाएंगे।
सर ये जो ग्रोथ आई है अपनी, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में तो अभी इतनी ग्रोथ नहीं आई होगी, तो डेफिनेटली हमने एक तो हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए वहाँ से, और कुछ मार्केट शेयर भी गेन हुआ है क्या, या कौन सी ज्योग्राफी ऐसी आपको लगती है जहाँ पे हमने थोड़ा मार्केट शेयर हमारे कॉम्पिटिटर से गेन किया होगा?
एक्चुअली ओवरऑल इंडस्ट्री में इस साल ग्रोथ दिख रहा है, कई सारे जो हम डीलर हमारे पीएस है उसमें भी ओवरऑल ग्रोथ है, और थोड़ा जो दूसरा आपने पॉइंट बताया मार्केट शेयर, वो मार्केट शेयर भी हमारा डेफिनेटली बढ़ा होगा, और जियोग्राफिकल रीच की वजह से और जो हमारा ब्रांडिंग है इसमें का जो ब्रांड अभी जो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, तो वो भी एक बेनिफिट हमें मिला है।
परफेक्ट परफेक्ट। एंड सर ये 113 करोड़ भी ये क्वार्टर में हुआ, उसका ब्रेकअप मिल सकता है, मतलब कौन से डिविजन से कितना हुआ है?
वैसे हमने पूरे साल वाला जो ब्रेकअप है उसको किया हुआ है, तो उसी प्रपोर्शन में थोड़ा सा मतलब 1-2% आगे पीछे हो सकता है,
बट ज्यादा डिविएशन
ज्यादा डिविएशन नहीं होगा।
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सर अपना ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन थोड़ा मतलब पहले अच्छे से ग्रो कर रहा था, बीच में थोड़ा स्लो था, अभी नेक्स्ट ईयर या आने वाले 3-4 साल में वहाँ पे जैसे स्टेट सब्सिडीज और ये सब भी इमर्ज हो रही है, तो उसमें क्या हमको लगता है ग्रोथ आ सकता है, और उसमें मार्जिन प्रोफाइल कैसा अभी है?
वैसे मार्जिन प्रोफाइल तो उसमें तकरीबन हमारा जो 5 वर्टिकल है इसमें 4th नंबर पे आता है, मेबी अराउंड जीपी 20-22% के आसपास उसमें रहता है, बट वैसे देखिए पिछले 2 साल में या पिछले 3 साल की हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर उसमें हमने 30% या इससे थोड़ा सा ज्यादा हमने ग्रोथ किया हुआ है, और इस साल भी हमें लगता है कि ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा।
ओके ओके ओके।
वन मोर पॉइंट ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन की जियोग्राफिकल जो हम कर रहे हैं कि लोकल ओईएम का हम सपोर्ट लेके ओईएम के साथ टाइप करके वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस बढ़ाएंगे, जैसे ईस्ट पार्ट में कलकत्ता से और वही पार्टी गहोती से भी काम खुलना उसने शुरू किया है, तो वो एक वहाँ से भी एक शहर बढ़ सकता है, साउथ में भी 3-4 हमारे ओईएम टाइप कस्टमर है जिसके साथ हमारा बिजनेस हो रहा है, तो जियोग्राफिकल भी हम रीच बढ़ाने के लिए हमारा एफर्ट है, और हमें लगता है कि वो बिजनेस भी हमें बढ़ेगा हमारा।
गॉट इट गॉट इट। एंड सर अपना बैलेंस शीट डिसिप्लिन भी काफी अच्छे से मेंटेन हुआ है, ग्रोथ के बावजूद भी डेट अपन ने कम किया है, तो वर्किंग कैपिटल भी अगर अपन देखे तो बहुत एफिशिएंटली हमने उसको मैनेज किया है, तो ये डेटा डेज तो ज्यादा कम नहीं हुए लेकिन इन्वेंट्री डेज काफी कम हुए हैं, उसका कोई पर्टिकुलर रीजन, मतलब हम लोग एफिशिएंटली इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने की वजह से, क्या रीजन हो सकता है उसका?
जैसे पिछले साल की हम बात करें तो उसमें इन्वेंटरी और जैसे प्रोक्योरमेंट का साइकिल पूरा डिस्टर्ब था, उसमें हम पूरे एडवांस पैसे देते तब भी हमें इन्वेंटरी टाइम पे मिल नहीं रहा था, अभी इस साल में वैसी बॉटल नहीं थी।
ओके
इस साल हमें इन्वेंटरी की डिलीवरी भी हमारे टाइम से मिल रही थी, और हमने हमारे प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी हम एफिशिएंटली कर पा रहे थे, तो पिछले साल हमने इन्वेंटरी को थोड़ा सा स्टॉक करके भी उसके रखा था क्योंकि इन्वेंटरी अवेलेबल नहीं थी।
ओके
पर इस साल में ऐसे कोई वैसे इश्यू नहीं आए हैं, और थोड़ा सा इन्वेंटरी के ऊपर हमने फोकस भी किया हुआ है, कैश फ्लो बिजनेस के प्रॉफिट के साथ साथ हमारा कैश फ्लो भी एफिशिएंट रहे, और जो हमारा डेटर्स है या इन्वेंटरी है उसमें ज्यादा पैसे हमारे खर्च ना हो, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा इस साल है।
गॉट इट सर गॉट इट। ऐसा मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसे हम जो ग्रोथ अभी नियर टर्म तो देख रहे हैं, बट थोड़ा सा अगर हम स्लाइटली FY25 और उसके अबव देखे, जब हमारा पैनल भी आ जाएगा और तब अपना सीपेक्स भी प्रोजेक्ट सारे मान लो कंप्लीट हो जाएंगे, गोइंग फॉरवर्ड कोई और वर्टिकल हम देख रहे हैं? जैसे चंद्रकांत जी और आप लोग सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करते रहते हैं, ऑन ग्राउंड भी रहते हैं, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से कोल्ड चेन इंडिया का मान लो इंडस्ट्री सेल्फ विल ग्रो वेरी फास्ट, तो बहुत सारे साल तक तो शायद हमको नए वर्टिकल शायद एड करने की जरूरत ना पड़े, बट ऐसा कुछ हम लोग सोच रहे हैं कि कंटिन्यूस ग्रोथ कहाँ से आएगी, या इन्हीं डिविजन में हम 30% जैसा कैगर ग्रोथ आने वाले 5-6 साल देख रहे हैं या कितने साल देख रहे हैं?
एक्चुअली ये वर्टिकल का जो फ्यूचर है, जो पोटेंशियल ग्रोथ है, वो एडजस्टिंग जो 20-30% ग्रोथ के लिए तो इनफ है, लेकिन कमर्शियल वाला जो हमारा वर्टिकल है उसमें भी हमारे जितने भी पीयर्स है वो लोग एग्रेसिव इंडियन मार्केट के पोटेंशियल उन लोगों को दिखता है और मार्केट ग्रोथ भी ऐसा ही है। अब तक कमर्शियल में हम जैसे बोले तो जैसे रिटेल आउटलेट के क्षेत्र या रिटेलर आजकल जितने भी छोटे छोटे जो आउटलेट होते हैं जो रिसेलर होते हैं, तो ये मार्केट पहले काफी सारा प्रोडक्ट इंडिया में चाइना से इम्पोर्ट होके चलता था। अभी इंडिया का मार्केट लोकल मार्केट इतना बड़ा हो गया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पूरी 100% अपॉर्चुनिटी होगी गवर्नमेंट को कई कॉल किया और उनकी वजह से, तो हमें लगता है कि कंटिन्यूस पैनल को हम स्टेबल करने के बाद उस प्रोडक्ट पे थोड़ा सा कैपेक्स करके हम उस वर्टिकल को और स्ट्रेंथन लेंगे। वर्टिकल तो हमारा कमर्शियल ही रहेगा, तो जो प्रोडक्ट है वो रहेंगे हमारे पास।
ओके ओके ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।
थैंक यू।
थैंक यू। The next question is from the line of Alkesh Mora, an individual investor. Please go ahead.
Yeah, hi. Thank you, everyone. So, my question is that basically current.
Sir, you are not audible. If you could please speak closer to the mic.
Okay. Can you hear me now?
Yes, this is much better, sir.
Okay. So, my basically question is that current quarter, mein jo growth aaya hai, जैसा आपने बोला कि मार्केट शेयर गेन हुआ है, तो क्या हम जान सकते हैं कि कौन से नए कस्टमर ऐड हुए हैं? इफ इट इज पॉसिबल।
नहीं, नए कई सारे कस्टमर तो ऐड हुए हैं, कई थोड़ा नाम तो हम कई जगह पे नहीं दे सकते, मगर ओवरऑल जो मैंने पहले बताया कि नए कस्टमर तो ऑनगोइंग प्रोसेस में आते रहते हैं, नए क्लाइंट। और जैसे बताया कि हमारा जो एमोनिया वर्टिकल हमने जो 4-5 साल पहले शुरू किया था, और डेयरी के लिए जो हमने सर्किट सॉल्यूशन प्रोवाइड शुरू किया, वो तो अभी धीरे धीरे दो वर्टिकल जो है वो हमारे एस्टैब्लिश होने जा रहे हैं, एक रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसका इफेक्ट रहेगा कि आगे जाके वही वर्टिकल से हमें बिजनेस ज्यादा मिलेगा।
हमारे जो थोड़े बॉटलनेक थे, जो पुराने टाइम पे हम एक स्केल पे वर्क नहीं कर सकते थे, वो बॉटलनेक दूर होने की वजह से भी हम कई सारी जगह पे कई बड़े ऑर्डर के लिए भी हम अभी एलिजिबल है, तो उन सब का बेनिफिट मे बी प्रीवियस क्वार्टर में भी हमें मिला था, आने वाले सालों में भी मिलेगा।
ओके,
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ महेश अटल फ्रॉम अटल एडवाइजरी, प्लीज गो अहेड।
सर, मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है, जो आपने बोला आपका 70% का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, सीएजीएस होता है, इसमें से अगर मैं मान लू, मुझे कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे ये करना था कि अगर आपके टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कितना रहेगा, वेरिएबल पोर्शन कितना रहेगा, एंड अगर मान लीजिए जैसे आपने आप और व्हाट इज द कैपेसिटी एट विच वी आर ऑपरेटिंग and what is the full capacity at which we can operate? ये दो चीजें मालूम करना।
Got it. हम capacity point of view बताए तो अभी more or less हम 70% की capacity consider कर सकते हैं, और full capacity में existing infrastructure में capex को add किए बगैर हम 450 करोड़ तक की top line हम generate कर सकते हैं।
ये panel business को छोड़ कर है ना सर, जो नया आने
वाला है? नया आने वाला है उस business को छोड़ के।
ओके ओके।
और मार्जिन बात करें कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है और फिक्स कॉस्ट कितना है, जो डायरेक्ट कॉस्ट हम एट्रीब्यूट करें
कि जो हमारे सेल्स के साथ डायरेक्टली लिंक होगी वो तकरीबन 7-8% की कॉस्ट है जिसको हम वेरिएबल काउंट कर सकते हैं। बाकी की कॉस्ट मोर और लेस फिक्स्ड है या सेल्स के साथ इतनी जल्दी या फास्ट ग्रो नहीं होगी।
ओके, तो मतलब ये मतलब बेसिकली व्हाटएवर जो हमारा एक्स्ट्रा बिजनेस जो आएगा वो सीधा बॉटम लाइन में फ्लो होगा।
हाँ, बॉटम लाइन पे वो इम्प्रूव करेगा, लेकिन हमारा मेन फोकस टॉप लाइन ग्रो करना है। तो कई जगह पे अगर कॉम्पिटिटिव होके हमारी मार्केट रीच बढ़ सकती है, नए कस्टमर ऐड हो सकते हैं, या हम जियोग्राफिकली एक्सपांड हो सकते हैं, तो हो सकता है कुछ बेनिफिट हम बॉटम लाइन में पास ऑन करें या कुछ टॉप लाइन बढ़ाने के लिए उसमें यूज भी कर ले।
बट फॉर दिस मेरे को आपके प्रेजेंटेशन से आपने जो दिया है, यू आर सेइंग दैट यू आर अ वर्क ऑन यू आर एक्सेसिव लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मुझे जहाँ तक पता आपके प्रेजेंटेशन से चलता है। तो क्या हम ये ऑटो जो मतलब अभी जैसे चल रहा है इंडस्ट्री में कि ऑटोमेट करना चाहिए, ऑटोमेट करने से आगे बढ़ रहे हैं ऑटोमेट करके, तो हमारे प्रोसेसेस में ऐसे कुछ है जहाँ पे आप देख रहे हो कि लार्जर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस कुड बी ऑटोमेटेड और समथिंग लाइक दैट?
एक्चुअली कंटीन्यूअस फॉग पैनल है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट ही नहीं है, उसमें 100% ऑटोमेशन है, लेबर ओनली हैंडलिंग पैकिंग लोडिंग में ही काम करेगा। अभी नया जो हम लोग एक्सपांशन या जो हमारा प्रोडक्ट में हम काम करने जा रहे हैं वहाँ वो हम लोग, हमें भी पता है कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट में एक लिमिटेशन है, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे ज्यादा। तो नया एक्सपांशन में हम लोग बिल्कुल क्या करते हैं, माइनोर कैपेक्स करके हम लोग लेबर कंट्रोल करने का, मतलब बिजनेस के साथ साथ टॉप लाइन के साथ लेबर परसेंटेज नंबर
में एग्जिस्टिंग में ऐसे कुछ हो सकता है सर कि मतलब कुछ हम सोच रहे हैं ऑटोमेट करने का और जिससे हमारा जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है ये कम है आगे जाके?
अभी जो है वो प्रोसेस में हमारे पास प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट में इतना लार्ज क्वांटिटी नहीं है जिससे हम लोग ऑटोमेशन करके उस प्रोडक्ट को करें। कस्टमाइजेशन, माइनर कस्टमाइजेशन बोल सकते हैं, इसी वजह से कंपैरेटिवली हमारा मार्जिन भी एवरेज बैठ जाता है, थोड़ा सा मोनोपोली जैसा भी है। एक आध दो प्रोडक्ट आपकी ऐसी है जो कस्टमर की नीड है, तो इनके पीछे आपके और वर्टिकल भी चलते हैं। आपने देखे हम लोग पिछले कई सालों से हर 3-4 साल बाद एक वर्टिकल प्लस करते हैं, वर्टिकल प्लस करते हैं, लेकिन कस्टमर सेगमेंट से ही होता है। तो ये नए वर्टिकल को बिजनेस लाने में या एस्टेब्लिश करने में कोई चैलेंज नहीं होता है। आप मार्केट में उस प्रोडक्ट नई प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी मार्केट और कस्टमर आपसे फेमिलियर है, आपसे सेटिस्फाइड है। तो अभी जो है एड्रेसिंग में ऐसा करके हम लोग कर पाए ऐसा चांस कम दिखता है, लेकिन नई जो प्रोडक्ट जोड़ते हैं या कोई नया टॉप लाइन ग्रोथ का जो सेम प्रोडक्ट में है वहाँ हम लोग उसको पूरा केयर करते हैं कि अभी मिनिमम लेबर से भी अब काम हो, ऐसा आगे जाके ऐसे ही प्रोडक्ट करे, ऐसे ही प्रोडक्ट डिजाइन करे।
ओके सर, ऑल राइट सर, थैंक यू फॉर द आंसर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।
थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई नाउ हैंड द कॉन्फ्रेंस ओवर टू मिस्टर मंदार देसाई फॉर क्लोजिंग कमेंट्स। ओवर टू यू सर।
इन क्लोजिंग, व्हाइल वी रिमेन कॉन्फिडेंट इन आवर एबिलिटी टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर, we want to assure you that we are deeply committed to executing our strategic initiatives and delivering sustainable growth. We value your support and trust you have placed in us. Your insights and perspectives are crucial in shaping our future trajectory, and we look forward to engaging in a meaningful dialogue in future. Before we close the session, on behalf of ISMAC Board of Directors and Management, we would like to thank you for sparing your valuable time and participation in this earnings conference call. Thank you.
Thank you. On behalf of ISMAC Refrigeration Limited and Ariana Matasco, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines.